गुर जनना भव भी जांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछली परिवर्तन देखने बैठे हुए थे। पिच्छी का महत्व हमारे अपने जीवन में क्या है, इसके लिए जैनाचार्यों ने लिखा है कि नग्नता के साथ पिच्छिका को धारण करने वाले मुनिजन तीर्थंकरों की परंपरा के हैं। इस बात का निश्चय हो जाता है, इसलिए नग्नता के साथ मयूर पिच्छी का एक प्रतीकात्मक चिन्ह। नग्नता एक तरह की पारदर्शिता है, न्यूडिटी इज द ट्रांसपेरेंसी, ऐसा लिखा गया है। भीतर और बाहर सब तरफ जो एक जैसा हो गया है उसका ही नग्न होना सार्थक होता है। वैसे तो पशु हमेशा नग्न ही रहते हैं, बच्चे भी नग्न रहते हैं, उस नग्नता का महत्व नहीं है। ये इंद्रिय विजयी और ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के जीवन में शोभा देने वाली वस्तु है। पिच्छिका की पांच विशेषताएं जिन पर हमें हमेशा विचार करना चाहिए। पिच्छिका धूल और पसीने को ग्रहण नहीं करती, बहुत आश्चर्य होता है। डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक भी जाएं तब भी ये उनको छोड़ देती है। शरीर पर पसीने की धारा बह रही इसी पिच्छी से पोंछ देने के बाद भी पिच्छी गीली नहीं होती है, बड़ा मजा है। यह हमें संदेश देती है कि हम भी बाहर के वातावरण से असंपृक्त रहें। वो सारी चीजें हमें छुएंगी, हमसे टकराएंगी, हमारे निकट आएंगी, लेकिन इसके बाद भी वे हमारे जीवन को बिगाड़ ना पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पिच्छिका की तीसरी विशेषता होती है कि वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सुकमाल होती है, ऐसा लिखा है, और मृदु भी होती है। दोनों शब्दों के दो अलग अलग अर्थ हैं, सॉफ्टनेस और डेलिकेट, इन दोनों में बहुत फर्क है। मृदु होने का सीधा सा अर्थ है कि दूसरे को चुभती नहीं है। हम लोगों के साथ तो मजा यह है कि हम तो अपने थॉर्न्स क्रिएट करके रखते हैं, हम तो अपने कांटे हमेशा उगाए रखते हैं कि कोई जरा सा छुए तो तिल मिला जाए, और पीछे हमें एक डायरेक्शन देती है कि नहीं, हमारा अपना जीवन बहुत मृदु बहुत कोमल होना चाहिए। ये बात तो बहुत समझ में आती है, लेकिन सुकमाल के मायने क्या है? इंग्लिश में उसके मीनिंग है डेलिकेट। डेलिकेट के मायने क्या है? टू हैंडलिंग केयरफुली। डेलिकेट वो है चीज जिसको कि बहुत बहुत संभाल करके उपयोग करना पड़ेगा। केयरफुली हैंडलिंग, बहुत सावधान व्यक्ति ही इसको हैंडल कर सकता है। मुझे याद है जब पहली बार दीक्षा के बाद ये मिली थी और विहार हुआ तो रेती का ढेर लगा हुआ था, वहीं पर बैठना था उसी रेती पर, तो मैंने जरा जोर से जो है उसको रेती पर लगाई। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा जरा संभाल करके, ये टूट जाएगी, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाएगी अगर आप ठीक से उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो बहुत डेलिकेट। तो हमारे अपने जीवन में भी हमें देखना होगा कि क्या हम अपने जीवन को बहुत सावधानी से हैंडल कर रहे हैं कि नहीं। अरे एक छोटी सी कार खरीद के लाते हैं तो उसको पहले ड्राइव करना सीखते हैं। ड्राइव क्यों करना सीखते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे से भिड़ी जाए, और कुछ हो ना हो, कहीं कोई खरोंच ना आ जाए, कहीं उसका रंग जो है वो निकल ना जाए। अरे इतना ध्यान रखते हैं एक छोटी सी कार खरीदने पर, और ये पूरा का पूरा जीवन हमारा अपना, कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें खरोंच ना लग जाए। शरीर में लगने वाली खरोंच से जो सब डरते हैं, वो जो भीतर खरोंच लग जाती है उसका डर तो बहुत कम लोगों को होता है। इस शरीर की मलिनता से तो हम सब डरते हैं, लेकिन भीतर हमारे परिणाम निरंतर मलिन होते चले जाते हैं, इसका हमें जरा भी ख्याल नहीं। ये पीछे हमें इस बात की याद दिलाती है कि टू हैंडल केयरफुली, अपने जीवन को बहुत सावधानी से ले जाना, नहीं तो जीवन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगा, और जो हमें उसकी सार्थकता जीवन में पानी थी वो हम नहीं पा पाएंगे। और पीछे बहुत हल्की होती है, लाइट इन वेट, सिर्फ इतना ही अर्थ है, वेट में बहुत हल्की है। आप आश्चर्य करेंगे, इसमें इतनी डंडी लगी है, इसमें इतनी रस्सी लगी है, भारी तो हो गई होगी, लेकिन आपको प्रयोग करना हो, अभी नहीं करना, हमारे पास वहां आएंगे तब करेंगे। एक चीटी जा रही हो, उस चीटी के ऊपर ऐसे रख दो, चीटी इसके बाद भी उसके नीचे से चलती रहेगी, ये मजेदार बात। इसका मतलब है कि ये बहुत बहुत हल्की है, दिखती तो है कि अरे इतनी भारी है और चीटी पर रख देंगे तो वो तो दब ही जाएगी उसके नीचे। नहीं, चीटी पर रखने के बाद भी इसको ऐसे मत रखना भैया, ऐसे कह रहा हूं, ऐसे रख देंगे तब भी चीटी पर कोई वेट नहीं पड़ेगा, उसका मूवमेंट रुकेगा नहीं, उसकी गति अवरुद्ध नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, जो व्यक्ति दूसरे की गति में बाधक नहीं पड़ता है वही व्यक्ति हल्का है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत वजनदार है। ये उसके हाथ में शोभा देती है, जिसके जीवन से हल्कापन निकल गया है उसके जीवन में वो चीज आ गई है कि वो अपने जीवन से किसी दूसरे के मार्ग में अवरुद्ध नहीं बनता, बल्कि उसे निर्बाध रूप से अपने मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता चला जाता है। ऐसी विशेषताएं इस पीछे की हैं, लेने वालों ने बहुत मेहनत करके इसे ली है, जिन्होंने नहीं ले पाई है उन्होंने भी मेहनत तो की है, पर जीवन में मेहनत करने के बाद भैया सबको चीज उपलब्ध हो ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने जीवन में हमने वर्तमान में तो बहुत कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन पूर्व जीवन में पता नहीं क्या क्या संचित और अर्जित करके रखा है, जो कि वर्तमान में बीच में आ जाता है और हमें हमारे हाथ में आते आते चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। फिर भी हमें अपने प्रयत्न में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो जब पीछे 4-8 लोगों के हाथ से ली है, तब मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि ये 4 हाथ नहीं है, 8 हाथ नहीं है, हर व्यक्ति का हाथ उसमें लगा हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति यही भावना भा रहा होगा कि महाराज का मोक्ष मार्ग ठीक ठीक चले। भैया मोक्ष मार्ग में तो ये सहायक है ही, श्रावक साधु के मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है, सो साधु भी उस श्रावक के मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त करने के लिए हमेशा उपदेश इत्यादि देते चले जाते हैं। ये संयम का उपकरण हमारे जीवन में संयम की शिक्षा देने के लिए भी आया है। संयम के मायने कोई बहुत कठिन नहीं है, संयम के मायने हैं आत्मानुशासन, संयम के मायने हैं आत्मनियंत्रण। दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश हमें ऊंचा नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता। ये गांधी जी ने भी बहुत पहले कहा था कि दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश जीवन को ऊंचा नहीं उठाता। जब व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं अंकुश लगा लेता है तब वो ऊंचा उठना शुरू कर देता है। संयम एक अंकुश है, अपने द्वारा अपने ऊपर लगाया हुआ अंकुश है। जिन लोगों ने, मैं तो सभी को मान के चल रहा हूं कि सबने हाथ लगाया है, इसलिए ये कैसे कहूं कि जिन लोगों ने मुझे पीछे दी है, जिन लोगों ने मेरे से ली है, मैं तो इस बार ऐसा मान ही नहीं रहा हूं। मैंने अपनी दुविधा कल भी बताई थी कि जहां मुझे सबसे प्यार है तो फिर मैं किसी एक से कैसे ले सकता हूं और एक को कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत हमें कभी भी आगे पीछे हुए हैं ऐसा नहीं सोचना। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप भले ही मेरे निकट ना आए हों, लेकिन अगर आपने अपने हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र को स्थान दिया है तो वे हमेशा आपके अत्यंत निकट हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को आत्मनियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करें। आत्मनियंत्रण है क्या चीज? हमारे जीवन में हम वाणी का उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, हमारे जीवन में हम मन से विचार करते हैं। इन तीनों के बिना हमारा काम नहीं चलता। सुबह से शाम तक हमें बहुत विचार करना पड़ते हैं, कोई हर्जा नहीं है। मैं कम से कम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला विचार अगर आ भी जाएगा तो उसे स्थगित कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, आज ना करूंगा। क्या इतना निर्णय नहीं ले सकते हैं? आज मेरा मन हुआ है कि मैं झूठ बोल दूं, क्या मैं इस चीज को शाम के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं चाहूं अगर तो, कि नहीं अभी तो सच ही बोलूंगा, शाम को झूठ बोल लूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि फिर शाम को ना बोल पाएंगे। ठीक इसी तरह सत्य के बारे में हम सोचते हैं कि शाम को सच्चाई का व्यवहार करेंगे, अभी तो झूठ ही बोल लें क्योंकि लाभ दिखाई पड़ रहा है झूठ बोलने से। हमें सच बोलने से जिस दिन लाभ दिखाई देने लगता है उस दिन फिर हमारा जीवन आत्मनियंत्रित होना शुरू हो जाता। जिसे लाभ हानि जय पराजय सब कुछ समान हो गया हो, वो व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो सकता है। गीता में उसके लिए स्थित प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, जिसका ज्ञान अब इस बात के लिए लालायित हो गया है कि नहीं मुझे अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, यही आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है। मैंने कुछ लोग कल पूछ रहे थे, शायद परसों पूछ रहे थे कि कोई जीवन के लिए सूत्र, एक ही सूत्र है, कहीं रख लीजिएगा। मैं आज विचार करूं कि आज कल से और बेहतर क्या कर सकता हूं, मैं आज कल से और बेहतर जी सकता हूं क्या? कल जैसा जीवन जिया था वो तो हो चुका, आज मैं क्या कल से बेहतर जी सकता हूं? इतना भी अगर हम अपने जीवन में कर लें, जहां भी रहें, हम चाहे भौतिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हम दोनों जगह इतना ही ध्यान रखें कि मुझे कल से बेहतर करना है। गड़बड़ियों के मामले में बेहतर करना है ऐसा मत समझ लेना कि कल मैंने थोड़ा पाप किया था आज थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कल से बेहतर करना ऐसा अर्थ मत न कर लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं वैसे यहां बैठे हुए लोग ऐसा गड़बड़ सड़बड़ अर्थ नहीं लगाएंगे, मुझे इतना विश्वास है, ठीक ही अर्थ लगाएंगे कि कल से मुझे बेहतर करना है। कल मैंने हो सकता है कि किसी की एक बात का 2 बातों से जवाब दिया होगा, कल किसी से मैंने कड़े शब्द बोले होंगे, कल किसी पर मैंने गुस्सा किया होगा, कल किसी से मैंने मायाचारी की होगी, कल रास्ते से निकलते मेरे मन में बहुत लोभ जागा होगा, लेकिन आज आज उससे कम ही करूंगा। आज किसी की चार बातें सुनने के बाद भी शांत रह जाऊंगा। आज 100 दफे भी छल करूंगा, लेकिन 1 दफे अपने छल को प्रकट कर दूंगा। किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि कोई नया नियम दे दो। बहुत मुश्किल है, अब आलू का छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ दिए, और चीजें हैं खाने के लिए, और भी बहुत सारी, रात में नहीं खाएंगे, ठीक है दिन में खा लेंगे, ये भी बहुत आसान है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ इससे तो काम नहीं चल सकता, दिन भर में बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कितने बार झूठ बोलते हो, कहला ये भी नहीं पता। तब फिर क्या करें, तो एक बार झूठ कम बोलना, बोले ये भी नहीं हो सकता। तब फिर इसके बाद भी नियम तो देना था, आत्म नियंत्रण सीखना है असल में, तो आत्म नियंत्रण का एक ही उपाय है कि मैं 100 दफे भी झूठ बोलूंगा, लेकिन 1 झूठ को कन्फेस कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, उसी व्यक्ति से जाके धीरे से कहूंगा कि वो जो मैंने दोपहर में या वो जो सुबह मैंने आपसे कहा था क्षमा करना, झूठ कहा था। बहुत हिम्मत का काम है, बहुत आत्म नियंत्रण का काम है। पूजा कर लेना, घंटी बजा लेना, जलधारा कर देना, रेडी रूटीन में शामिल है बाबा, जब चाहे तब कर दो, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, भाषा जरूर ऐसी कह रहा हूं, पर जो चीजें आसान है वो तो अपन ने कर ली। हम अपने आत्मा के ऊपर नियंत्रण करें, इसके लिए ये पीछी हमको संदेश दे रही है। दूसरी बात, हमको इस पीछी से संदेश लेना चाहिए, सहनशीलता का संदेश लेना चाहिए। धर्म हमें सहनशीलता सिखाता है। हम कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को संभाल करके रखें, अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने शरीर को संभाल के रखें, ये शिक्षा भी आत्मनियंत्रण के अंतर्गत या संयम के अंतर्गत आती है। मुझे एक घटना याद आती, मैंने भोपाल में सुनाई थी ये उस समय, सबको याद आ जाएगी शायद, लेकिन अब कोई नई घटना सोच रहा था कि सुनाऊं, लेकिन नहीं सुना पा रहा हूं, नई घटना वही पुरानी वाली सुनाए देते हैं, आप भी रिवाइज कर लीजिएगा यही समझ करके। क्या हुआ एक बार कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते ना लोग, तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब जहां तक ट्रेन जाती थी वहां तक तो ट्रेन से गए, जहां तक बस जाती थी वहां से बस तक गए, फिर उसके बाद अब पांव पैदल भी चलना था, और पांव पैदल कमती नहीं चलना था, 10 किलोमीटर चलना, तो थोड़ा ज्यादा तो होता है 10 किलोमीटर, और फिर उसमें भी जो है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चढ़ाई भी थी। तो चले, सब लोग चल रहे थे, माँ भी जा रही थी, पिता भी जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़ी अम्मा जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो मजबूत मजबूत लोग थे वे भी थक गए, तो सबने कहा देखो अब थोड़ा सुस्ता, अब बैठ जाए, तो एक पहाड़ी चढ़ करके थोड़ा सा बैठ जाए। सब बैठे तो सबने बातचीत शुरू कर दी। अच्छा, बातचीत का बड़ा मजा है, जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद भूल जाता है, कुछ दूसरी ही बात चलने लगती है। तो क्या बात चली, बहुत कमर में बहुत दर्द हो रहा, एक ने कहा, दूसरे ने कहा अब कमर तो ठीक है, ये बात तो सीधी करें, ले पांव में तो बहुत तकलीफ है, तीसरे ने कहा कि वो कांटा तो अब भी लगा है, निकला तक नहीं है, फिर देखना थोड़ा पिन है क्या, हल पिन वगैरह। सब अपने अपने में लगे हुए थे, सबको अपनी शारीरिक तकलीफ सुनाने का मन हो रहा था, और बढ़ा चढ़ा के दुख तो हमेशा भैया ज्यादा ही करके देखे जाते हैं, सुख है कि कमती करके देखा जाता है। तो सबने अपना दुख बढ़ा चढ़ा के दूसरे को सुनाया, लेकिन इस बीच में सबकी दृष्टि गई कि एक बूढ़ी अम्मा जी बैठी हैं, वो चुपचाप बैठी, वो किसी से कुछ नहीं कह रहे, सुन सबकी रही। तब सबका ध्यान चला गया, वो 10-15 जो उनके आसपास बैठे थे वो उनके पास गए, अरे आपने नहीं बताया, आप भी तो थक गई होंगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया था बूढ़ी अम्मा ने, बोली भैया तीर्थ यात्रा में दुख कहे नहीं जाते, सहे जाते। बात हो गई, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हुए हैं, हम धर्म के रास्ते पर निकले हुए हैं, हम मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं, तो दुख जो है वो कहे नहीं जाते, दुख तो सिर्फ सहे जाते हैं। क्योंकि जितने जितने दुख हम सह लेते हैं उतने दुखों से हम पार हो जाते हैं। बड़ा मजा है, कोई दूसरा हमारे दुख सह ही नहीं सकता, हम ही को सहना पड़ेगा। आज अगर हम उन दुख को नहीं सहेंगे कल सहना पड़ेगा, और हम तो ये सोचते हैं कि जो अपने पूरे जीवन में दुख सह लेगा तो अगले जीवन में फिर उसके खत्म ही हो जाएंगे, दुख तो कहां से रह जाएंगे, सब बैलेंस हो गया। ऐसा सोच करके, और अगर हम इस मोक्ष मार्ग पर इस संयम के दिन और पीछे परिवर्तन के दिन कोई संकल्प लें तो यही लें कि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हो सकता है कि हमारे जीवन में असाता के उदय में और दुख इत्यादि आ सकते हैं। जो लोगों ने नई पीछी दी है या पुरानी पीछी ली है उन सबके में भी, जो लोग लेने का मन बना रहे हैं उनके मन में भी आ सकता है। हम सबको जो है यही संकल्प लेना चाहिए कि हम इस धर्म के रास्ते पर शांत भाव से बहुत सहनशील होकर के और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है कि ये पीछी जो पुरानी पीछी है वो किसी एक के पास ही रहेगी। मैंने आपसे दो दिन पहले भी कहा था कि सबका मन तो हो रहा होगा कि हमको मिल जाए, हमारा भी मन हो रहा था कि सबको मिल जाए, पर ना आपके मन की हुई ना हमारे मन की हुई, क्योंकि पीछी तो एक ही थी। एक चीज जरूर हो सकती है जो हमने सोचा है कि अगर सब लोग छोटा छोटा सा नियम ले लेंगे तो पीछी एक के पास रहेगी, लेकिन एक के पास होते हुए भी सबके पास रहेगी, इस दिन की स्मृति रहेगी। एक महाराज जी हैं हमारे संघ में, वो कहते हैं कि साल भर में किसी भी एक दिन का, बस एक दिन का नियम ले लेना चाहिए। साल भर में एक बार आएगा, उसका इंतजार रहेगा, उस दिन के साथ जुड़ी हुई घटनाएं सब एक के बाद एक याद आएगी। तो आज अपन ऐसा कर सकते हैं, और जो जो लोग पुरानी पीछी लेने से वंचित हो गए हैं उनके लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर से रिवाइज करता हूं, मैं एक एक पंख तो जरूर दे दूंगा, मैंने ऐसा सोचा है। आप लेना पसंद करेंगे एक एक पंख ले लेना आप हमसे, जब भी अब जब हमारे पास होगा, अगले साल तक होगा तो अगले साल तक दे देंगे, क्योंकि इसमें से तो दे नहीं सकते हम, बुद्धि बहुत जल्दी बन। और जिनके पास ये पीछी है अपने मन में आ रहा होगा कि वो क्या करेंगे इसका, अब लगा भी नहीं सकते क्योंकि कपड़े उतारना पड़ेंगे, पीछी लगाने वाला कपड़े थोड़ी पहने रह सकता है, हैं? तो क्या करेंगे, ये रखे रहेंगे पुरानी वाली अपने पास। आचार्य महाराज से पूछा था तो वो कहते कि पता नहीं इसको देखते देखते किसी दिन मन में आ जाए कि अरे हमको तो ऐसी ही मोक्ष मार्ग में स्थित होकर पीछी लेना थी, और अगर जीवन भर भी नहीं याद आए, मरण के समय पर भी याद आ जाए तो भी जीवन के अंत समय में महाव्रतों को लेने की भावना बन सकती है। नहीं ले पाए कोई बात नहीं, लेने की भावना तो बन सकती है, कदाचित उस भावना से पुण्य का अर्जन करके अगर देव पर्याय में गए तो सबसे पहले अवधि ज्ञान लगा के देव देखते हैं कि कहां से आया, किस पुण्य के फलस्वरूप मुझे देव पर्याय मिली, तो फौरन दिखाई पड़ेगा वही मरण का समय और वही बाजू में रखी है पीछी। अरे मैंने महाव्रत लेने की भावना भाई थी इसलिए मैं देव पर्याय में आया, अब तो जल्दी से यहां से जाके और सचमुच मनुष्य पर्याय पा करके महाव्रतों को अहिंसा को अंगीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, ऐसी इसका महत्व है। इसलिए सब लोग इसको संभाल के रखते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये आए। भैया सबके लिए धर्म का ही सहारा है, अपन तो और दुनिया भर के सहारे ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए जब जब भी विपत्तियां अपन पर आती हैं कौन सहायी होता है, अपना भगवान है, अपना धर्म, जो हमारी अपनी पवित्रता है वही सहायी होती है। ये पीछे भी हमको हमारे परिणामों को हमारे जीवन को संभालने में सहायी होगी। एक और छोटी सी घटना मैं पहले भी सुना चुका हूं फिर से सुना रहा हूं, जीवन में काम आती हैं छोटी छोटी सी बातें। क्या हुआ था सबको मालूम है, जब सीता जी को रावण हरण करके ले गए थे और लंका में ले गए थे, और रामचंद्र जी को मालूम पड़ गया था, हनुमान जी ने आकर के मैसेज दिया था। बहुत बड़े मैसेंजर थे हनुमान जी उस समय के, सही सही खबर ला करके उन्होंने दी कि हम वहां मिलकर के आए। वो मिलके भी आ गए वहां पर जाकर के, उनके पास विक्रिया रिद्धि थी। अब कैसे पहुंचा जाए, सब लोग कैसे पहुंचे, अब हनुमान जी जैसे विक्रिया के द्वारा उड़ करके तो नहीं जा सकते आकाश मार्ग से, तो क्या करें, तो फिर पुल बनाए। अब टेक्नीशियन बुलाए गए, उस समय भी टेक्नीशियन होते थे, ये नहीं समझना कि अभी टेक्नीशियन सब लोग होते हैं, नहीं, उस समय भी पुल बनाने की टेक्नोलॉजी थी। बना रहे थे लोग पुल, नल और नील नाम के दो इंजीनियर, इनका नाम आता है पद्म पुराण, वो लगे हुए थे उस समय और वो बना रहे थे। हनुमान जी भी उसमें मदद कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की मदद जो है जरा अलग ढंग की थी, उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। एक ज्ञान से कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें श्रद्धा से भी होती हैं। जब हमारा ज्ञान सब धरा रह जाता है और श्रद्धा जीत जाती है, जब हम जिसका सहारा लेते हैं उसके सहारे पार हो जाते हैं, हमारे अपने तई हम पार नहीं हो पाते, हम अपनी पूरी हिकमत लगा देते हैं फिर भी पार नहीं हो पाते, और जरा सा किसी के चरणों में माथा टेक देते हैं तो पार हो जाते हैं। और वही स्थिति हनुमान जी की थी। रामचंद्र जी ने सोचा कि जरा इंस्पेक्शन करके देखा जाए कैसा चल रहा है वर्क, कैसा काम चल रहा है, तो वो गए, उन्होंने देखा कि बन रहा है पुल बन रहा है, और पत्थर जो है रखते चले जाते हैं पानी में, वो तैरने लगते हैं। स्पेशल क्वालिटी का आज भी वैसा पत्थर है, आप ये नहीं समझिए, अगर आप साइंस के हिसाब से पूछेंगे तो वैसा पत्थर भी है जो पानी पर तैर सकता है, पर बहुत रेयर है। एक स्टोन जो है वैसा वाला सोनागिर में पड़ा हुआ है, आपने शायद नहीं देखा, बहुत पहले मैं गया था उधर, वो है स्टोन जिसके अंदर होलो, उसके अंदर आवाज भी आती है, उसके अंदर आप ऊपर से बजाएंगे तो आवाज आएगी, वो होलोनेस है, और वो डाल दिया जाए तो वो तैरेगा पानी के ऊपर, उसके ऊपर से आराम से निकला जा सकता। खैर वो साइंस वाइंस की बात छोड़िए, श्रद्धा की बात। और पत्थर डालते चले जा रहे थे, और लेकिन पत्थर के साथ साथ क्या चीज थी, किसी भी काम में जब तक हमारा अहंकार रहता है तब तक काम सफल नहीं होता। विनोबा की मां जब दही जमाती थी तो राम का नाम पहले लेती थी फिर जावन डालती थी, तो विनोबा जब बड़े हो गए तो उनने कहा कि अम्मा अजीब बात है, ये बताओ दही जामन से डलता है कि राम जी का नाम लेने से डलता जमता है? अगर राम जी का नाम लेने से जमता है तो जामन काय को डालती, और अकेले जामन डालने से जमता तो राम जी का नाम क्यों लेती? बड़े तार्किक थे विनोबा। तो मां हंसने लगी, उन्होंने कहा तू नहीं समझेगा, जमता तो दही जामन से ही है, लेकिन जमाने का अहंकार ना आ जाए इसलिए राम जी जमाते हैं, ऐसी हमारी श्रद्धा है। ऐसे ही जो है हनुमान जी भी उस पत्थर पर श्री राम लिखते चले जा रहे थे और डालते चले जा रहे थे। रामचंद्र जी ने खुद देखा कि हमारा ही नाम लिखा हुआ है और पत्थर आराम से तैर रहा है, अब जब अपने ही नाम लिखा है तो अपन खुद डालेंगे तो अपने आप तैरेगा। देखा, एक बहुत लॉजिकल सी बात है। तो उन्होंने एक पत्थर जो है डाला, जैसे ही डाला तो वो तो डूब गया उसमें, वो तैरे ही नहीं। उन्होंने कहा गड़बड़ हो गई कुछ, कोई ने देख तो नहीं लिया, रामचंद्र जी ने भी देखा कि गड़बड़ हो गई, तो नहीं कोई ने नहीं देखा था, सब अपने अपने काम में लगे थे। उन्होंने फिर अगली बार एक दूसरा पत्थर उठाया, फिर धीरे से डाला, वो भी डूब गया। अब तो लगता है ऐसा डाला था तब भी, अब उल्टा डाला तब भी डूब गया, कैसा डालना चाहिए? हनुमान जी देख रहे थे, वो मुस्कुरा दिए, उन्होंने धीरे से हनुमान जी से पूछा कि भाई ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, तुम मेरा नाम लिख करके डालते हो तैरने लगता, और मैं खुद श्री राम डालता हूं तो डूब जाता है, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने कहा भगवान बस सीधी सी बात है, इसमें क्या, अरे जिस पर आपका नाम लिखा है वो डूब कैसे सकता है, और जो आपके हाथ से छूट गया वो डूबे बिना रह कैसे सकता है? वो तो डूबे नहीं। हमको इस घटना से क्या लेना है? हमारे हृदय पर धर्म का नाम, भगवान का नाम लिखा रहे भैया, नहीं तो अब डूबे तब डूबे। सब कुछ छोड़ देना, भगवान को नहीं छोड़ना, संयम को नहीं छोड़ना। आज के दिन हम यही अपने जीवन में लेकर के जाएं कि हमने जिस उत्सुकता से और जिस साहस के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए कदम उठाया है, हम अपने जीवन को
वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं जितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी हम लोग अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं इस बारे में थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि यहाँ मनुष्य की तरह से जिसने भी जन्म लिया है उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को रोज रोज और बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा बनाता जाए। कौन नहीं चाहता कि वो आज अपना जीवन कल से अच्छा, अच्छे ढंग से जिए, और कल जब फिर वो अपने जीवन की शुरुआत करे तो आज से भी अच्छा उसका सुनहरा कल हो। भविष्य को भी हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और वर्तमान में भी हम बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। भले ही हमारा अतीत कितना भी तकलीफों में, परेशानियों में गुजरा हो, लेकिन कोई व्यक्ति ये पसंद नहीं करता कि उसका भविष्य या कि उसका वर्तमान भी दुख में गुजरे। हमारी सबकी कोशिश यही होती है कि हम अपने जीवन को दुख से मुक्त करें, और एक शाश्वत सुख अगर प्राप्त होता है कहीं तो हम उसको प्राप्त करें। लेकिन क्या करें, हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से हमारी सारी कोशिशें असफल हो जाती हैं। धर्म हमें उस अज्ञानता से बचाने का उपाय बताता है, और उस उपाय को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। एक बहुत छोटी सी घटना एक बार घटित हुई। कोई एक रामतीर्थ हुए हैं, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को थोड़ा परेशान सा देखा। वो अपनी मां को बहुत परेशान कर रहा था। बाहर मकान के चबूतरे पर वो खेल रहा था और मां वहीं बैठी, वो परेशान कर रहा था उसको, क्या परेशान कर रहा था उन्होंने देखा। क्योंकि धूप थी तो उसकी छाया पड़ती थी, और जो उसकी छाया पड़ती थी तो वो सोचता था कि मैं इसको पकड़ूं, तो वो अपनी छाया को पकड़ने दौड़ता था और वो पकड़ में आती नहीं थी। छाया कैसे पकड़ में आएगी? तो जब वो पकड़ में नहीं आती थी तो वो अपनी मां से जिद करता था कि मां देखो ना तुम मदद करो, थोड़ी सी बताओ मैं कैसे अपनी इस छाया को पकड़ूं। तो मां उसको समझाती थी कि ये तेरा खेल ठीक नहीं है, तू ऐसी जिद मत कर। लेकिन वो काय को समझने वाला, वो तो बहुत जिद कर रहा था और चीख चिल्ला भी रहा था। तो रामतीर देखते रहे बहुत देर तक खड़े खड़े। वो बहुत आश्चर्य में थे कि इस लड़के को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने जाकर के झट से और उस लड़के का हाथ उसी के सिर पर रख दिया, और जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, पहले तो लड़के ने उसका विरोध किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर गया तो उसने देखा कि छाया के सिर पर भी उसका हाथ रख गया है। बहुत खुश हुआ वो, और अब उसका खेल दूसरा ही हो गया। वो बैठता तो छाया भी बैठ जाती, वो भागता तो छाया भी भागती, वो सिर पर हाथ रखता तो छाया के सिर पर हाथ रख जाता। वो बहुत खुश हुआ कि अब छाया उसके अपने वश में है। पर रामतीर्थ वहां से आगे जाकर अपना संस्मरण लिखते हैं कि उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारी कितनी अज्ञानता है कि हम छाया के पीछे दौड़ रहे हैं और जिसकी छाया है उसको भूले हुए हैं। जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा या कि शरीर के द्वारा या कि मन के द्वारा इस संसार का विस्तार करते हैं वो सब हमारी उस आत्मा की छाया है, लेकिन हम उसी छाया में रच बच गए हैं और उसे ही हमने अपना मान करके और अपने उस आत्म स्वरूप को भूलते चले जा रहे हैं। धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि कोई एक हमारी अपनी आत्मा है जिसके उत्थान पतन के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमारे पतन में हमारा मोह हमारा अज्ञान जिम्मेदार है। यदि हम इस अज्ञान को और मोह को हटा दें तो कोई हमारे आत्मा को ऊंचा होने से रोक नहीं सकता, हमको सुख पाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई हमें दुख दे रहा हो ऐसा नहीं है, हमारे अज्ञान की वजह से हम स्वयं यहां पर दुख पा रहे हैं। ये बात हमको समय रहते समझ में आनी चाहिए, लेकिन हम निरंतर अपने उस मोह को बढ़ाते चले जाते हैं इस संसार में। आज हमें जरूर से तीन बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आत्मा अपने आप में शाश्वत है और बहुत विराट है, देह बहुत क्षुद्र है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो असीम नहीं है, लिमिटेशंस हैं उसकी। और तीसरी बात, मेरा अपना स्वधर्म या कि स्वकर्म क्या है? काम कर्म भी होता है, नियत कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है, और अपना स्वधर्म भी होता है। मुझे क्या करना चाहिए इस जीवन में, मैं आया हूं तो मुझे किस तरह जीना चाहिए? इतनी बातें अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें, हम सीधी सीधी ये भी विचार कर सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर करने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, हमारे यहाँ हमारे अभिप्राय को ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा शाश्वत है और ये शरीर नश्वर है। जब तक हम ये बात अनुभव नहीं कर लेंगे, जानते तो अपन हैं, रात में 12 बजे भी कोई जगा करके अपन से पूछ ले तो अपन कहेंगे आत्मा अजर अमर है, वो मरती वरती नहीं है। लेकिन अभी अगर कोई कह दे कि आ गई मृत्यु तो घबराएंगे भी उतना ही कि जैसे अब मरे तब मरे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान अलग है और हमारी अनुभूति अलग है। हमारी जानकारी तो बहुत है, अब हमें उसको अनुभव बनाना है। हमें ये सीख तो लिया है, हमने समझ भी लिया है, लेकिन हमें इस बात का अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ सचमुच आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है, ये मेरी समझ तो अच्छी है लेकिन मेरा अनुभव गड़बड़ है। अनुभव कैसे ठीक करेंगे हम? बहुत आसान है, जब भी हमारे परिणाम बिगड़ने लगें तो हमें फौरन संभल जाना चाहिए। जैसे हमारा शरीर बिगड़ता है तो हम संभल जाते हैं, हमारा डॉक्टर हमसे कह दे कि अगर आप खटाई खाएंगे तो गड़बड़ होगी तो हम खटाई बंद कर देते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उनसे अगर ज्यादा पूछो कि ये खा लें वो खा लें तो वो मालूम क्या कह देते, मन ने हो तो खा लो, सो अपने आप नहीं खाते। हम अपने व्यवहार से पता कर सकते हैं कि हमारी जानकारी ठीक है कि नहीं। अगर हम सुबह से शाम तक शरीर की सेवा कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम शरीर को नश्वर होते हुए भी अविनश्वर रखना चाहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और अगर हम आत्मा के निरंतर पतित होते हुए भी चिंतित नहीं होते हैं इसका मतलब है कि हमारी जानकारी अभी अधूरी है, वो अनुभव नहीं बनी। एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताऊं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था, बहुत संभल के चल रहा था वो। इसके बाद भी पता नहीं क्या घटना हुई, दुर्घटना हुई कि एक कार आकर के उससे टकरा गई, वो गिर गया, बेहोश हो गया और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको। हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो उसने देखा कि सिर्फ आंख को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर में पट्टियां बांध दी गई, इतना अधिक उसको लग गया था। बहुत सारे लोग उसके जो मित्र थे वो मिलने आए, एक बहुत पुराना मित्र उससे मिलने आया।
अब किसी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी हो तो हाथ पे हाथ रखा जा सकता है, माथे पर हाथ रखा जा सकता है, लेकिन वहां पर माथे पर भी हाथ रखने की गुंजाइश ही नहीं थी, पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है, क्या करे वो? तो उसने अपना चेहरा उसकी आंखों के पास ले जाके धीरे से कहा कि क्यों, कैसे हो? तो उसने कहा ठीक हूं। अरे, उसको मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि कह रहा है कि ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। तो उसने कहा कि इतनी चोट आ गई, दर्द तो बहुत होता होगा। तो मालूम उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? आई फील सम पेन व्हेन आई लाफ, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मैं मुस्कराता हूं तब। अब तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ, इतनी अधिक चोट लग जाने के बाद भी इसको मुस्कुराने का वक्त कम मिलता होगा, जो ये कह रहा है कि आई हैव सम पेन व्हेन आई लाफ, जब मैं थोड़ा हंसता हूं, जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे तकलीफ है। उसने कहा कि मुझसे तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा नहीं, जिंदगी भर अपने से मजाक करता रहा, अब तो किसी से मजाक करने का कोई भाव ही नहीं है। बड़े अजीब जवाब दे रहा है वो, जिंदगी भर अपने से मजाक करता रहा, अब तो किसी से मजाक करने का कोई मजा उद्देश्य नहीं है। उसने कहा कि मुझे तुम ठीक ठीक बोलो, लगता है तुम्हारा माथा भी फिर गया है। ऐसी अगर अच्छी अच्छी बात कोई करने लगे ना तो अपन को माथा फिरा हुआ मालूम पड़ने लगता हो। अगर कोई घर छोड़ने की बात करे तो अपन धीरे से उसको कहीं दूसरे कमरे में ले जाएंगे, क्या हो गया तुम्हें, किसने क्या कह दिया तुम्हारे लिए घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अगर सच्ची में भी करे तो कल्याण करने की बात अगर कोई किसी से करे तो एकदम सहसा विश्वास नहीं होता। और ऐसे ही उस मित्र को भी नहीं हो। उसने कहा कि कहना क्या चाह रहे हो तुम, आखिर तुम्हारा हो क्या गया दिमाग? उसने कहा अभी तक खराब था, अब ठीक हो गया। उसने कहा फिर भी कुछ बताओ मुझे, क्या तुम्हारी तकलीफ है? उसने कहा बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, मैं जिंदगी भर इस धोखे में था कि शरीर के टूट फूट जाने से मैं भी टूट फूट जाऊंगा, लेकिन आज इस बेड पर पड़ा हुआ मैं महसूस कर रहा हूं कि जो टूट सकता था वो पूरी तरह टूट गया है, इसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि मैं फिर भी ठीक हूं। ये मेरी अपनी अनुभूति है, इस शरीर के टूट फूट जाने के बाद भी मैं देखो तुमसे बिल्कुल बाकायदे बात कर रहा हूं और बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कहीं कुछ भी नहीं, भीतर कहीं कुछ नहीं टूटा, जो टूट सकता था वो टूटा है। देखो भैया, अनुभूति इसी तरह की होगी। बाकी चर्चाएं तो अपन कर सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन जरा सा पिन चुभ जाने पर कितनी तकलीफ हम महसूस करते हैं, जरा भी शरीर से हम विरक्त नहीं हो पाते हैं, सुबह से शाम तक हम शरीर की सेवा टहल में लगे रहते हैं, जरा भी हमारे पास अपने जीवन के कल्याण के लिए अगर वक्त नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी जानकारी बहुत सतही है, बहुत सुपरफिशियल है, हम बहुत ऊपर ऊपर इन चीजों को अपने माथे में भरे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा सिरंगम कर लेना बहुत आसान है, हृदयंगम करना चाहिए, हमारे हृदय में वो बात जम जानी चाहिए, तब फिर हमारी हमारे व्यवहार में आए बिना नहीं रहेगी, हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसा है शरीर की जितनी सुविधाएं हैं ठीक है, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा आ पाता है क्या? नहीं, वो तो रोज हमको एक घंटे नहाने के लिए चाहिए, एक घंटे श्रृंगार के लिए चाहिए, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, यों चाहिए त्यों चाहिए। अरे ऐसा क्यों, इसमें कमी क्यों नहीं आती? हम बहुत देखते रहते हैं ये चीज, इसमें जरा भी कमी नहीं आ रही, और हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हम चर्चा भी कर लेते हैं। नहीं, अपने को बढ़िया चर्चा तो करनी चाहिए, बढ़िया बातें भी सीखनी चाहिए, लेकिन अपना जीवन भी बढ़िया बनाना चाहिए। और जीवन बढ़िया कैसे बनेगा? इसी तरह कि जिससे मुझे आसक्ति होनी चाहिए वो है मेरी आत्मा, और जिससे मुझे विरक्ति होनी चाहिए वो है मेरा शरीर, और शरीर का ये विस्तार ये संसार, इससे मुझे आसक्ति कम करनी चाहिए, इससे तो धीरे धीरे विरक्त होना चाहिए, जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियों के मामले में जितना मिल जाए उसमें संतोष, आध्यात्मिक उन्नति के मामले में जितना मिल गया उससे और अधिक मिले, इस बात की भावना, इस बात की कामना होनी चाहिए। इतना छोटे से सूत्र में इतनी सी बात कह दी, संसार की कोई भी चीज मिल जाए हम बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा बताओ, एक ठो नया कपड़ा खरीद करके कैसे फूले नहीं समाते हैं अपन, एक ठो कोई नई चीज घर में ले आते हैं कैसे बड़े खुश होते हैं, सबको दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है। अरे वो कितने दिन रहेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस नई चीज को पाकर के रोने लगो कि हमारे पास ये नई चीज आ गई, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। रोना और हंसना दोनों ही गड़बड़ चीज है। नहीं आई है तो ठीक है, उपयोग करने के लिए है, अगर मेरे उपयोग में नहीं आती दूसरे के उपयोग में आती उसको दे दूंगा, उपयोग करने के लिए, और उपयोग भी सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। सब चीजें, इंद्रियां मिली हैं सदुपयोग के लिए, मन मिला है सदुपयोग के लिए मिला, शरीर मिला है सदुपयोग के लिए मिला, सुबह भी अपन चर्चा कर रहे थे। और कुछ भी नहीं करना, ना शरीर को तोड़ फोड़ के कहीं फेंकने जाना है, ना आंख फोड़ना है, ना कान फोड़ना, कुछ नहीं करना, सबका सदुपयोग करना। इतना ही अगर हम सीख लें तो इसका मतलब हमें अब अनुभव हो गया है कि आत्म कल्याण के लिए ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के लिए मेरी आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा के लिए ये सारी चीजें हैं। पहली पहली बात कि आत्मा की शाश्वतता और देह की नश्वरता का इस तरह हम अनुभव करना शुरू करें, और दूसरी बात अपने स्वधर्म को पहचानें। स्वधर्म क्या है? जिससे कि हमारे आत्मा का कल्याण हो वो हमारा स्वधर्म है, और जो व्यक्ति अपने स्वधर्म की तरफ लगा हुआ है उसके द्वारा दूसरे का कल्याण हो ही नहीं सकता। स्वधर्म करने का उपाय क्या है? कहते दो ही, जो भी कर्म करें वो सहज रूप से करें, अहंकार से रहित होकर के करें, यही सहजता है, और दूसरी हार्दिक होकर के करें। कितना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, कह लेना बहुत आसान है। मैं भी शायद ये पूरा ना कर पाता हूं। जो भी कर्म करें, कितनी बढ़िया बात है, जो भी कर्म करें सहज होकर के करें, मतलब अपना उसमें अहंकार या कर्तापना ना आरोपित करें। जैसे विनोबा से किसी ने कहा कि आप आइएगा हमारे यहां राम नाम का जप चल रहा है, तो उन्होंने कहा आऊंगा। तो फिर उनसे लोगों ने कहा कि आप ये बताओ कि आपका किस में नाम लिख लूं, कितने जप करेंगे आप, कितनी बार राम का नाम लेंगे, कौन से खाने में लिख लें, 1,00,000 बार लेंगे, 1,000 बार लेंगे, 100 बार लेंगे, कौन में नाम लिख लें आपका, उस हिसाब से हम लिस्ट बना रहे हैं, उस हिसाब से बैठने वालों को जगह दे रहे हैं कि ये लोग 1,00,000 बार राम का नाम लेंगे तो इनका अलग कैडर, उनका 1,000 वालों का, उनका 100 वालों का कैडर। तो विनोबा ने कहा कि राम का नाम लेने तो आ सकता हूं, लेकिन गिन गिन करके लेने नहीं आ सकता। अरे नाम का नाम लेना है तो फिर गिन गिन के क्या, इकट्ठा करना हो तो गिन गिन कर इकट्ठा करो, छोड़ना हो तो क्या गिन गिन करके छोड़ना, फेंक नहीं है, जब आप अपने कचरे को तोल तोल के फेंकते बाहर, आज 1 किलो कचरा फेंका मैंने, अच्छा, और फिर बाहर लिस्ट लगाते हैं क्या, हमने अपने घर में से 1 किलो, अरे वो तो पता तक नहीं लेने देते दूसरे को कि कितना सारा कचरा हमारे घर में हो गया था और हमें फेंकना पड़ा बाहर। तो जो चीज वेस्ट है उसको तो ऐसे ही फेंक दो, सहज होकर के हमें जो अच्छाइयां हैं उनको अर्जित करना चाहिए, जो बुराइयां हैं उनको सहज होकर के, कोई अहंकार करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी प्रवृत्ति बन गई, हमारी आदत बन गई है कि अच्छा करते हैं तो गिन गिन के करते हैं, बुरा करते हैं तो बस अनगिनत करते चले जाते हैं, दान देते हैं तो गिन गिन के देते हैं। ये प्रवृत्ति हमें हमारे कर्मों को सहज नहीं होने देती है। अच्छा बताओ, क्या कभी कोई माँ अपने बेटे की इतनी सेवा टहल करती, बचपन से उसे बड़ा करती, क्या कभी किसी कागज पर वो लिखती जाती है कि आज इसको दो बार नहलाया, आज तो इसने गंदगी भी कर दी थी वो भी मैंने इसकी साफ करी है, इसने कपड़े कितने खराब किए मैंने कितनी बार धोए, ऐसा लिखती है क्या? ऐसा कभी किसी पत्र में कभी पढ़ा पेपर में कि आज एक माँ ने जो है इस तरह पत्रकारों के सामने कहा कि आज हमने अपने बेटे को इतना इतना सेवा करी? अरे इसमें तो वो कभी भी नहीं कहती, वो उसके लिए सहज कर्म है। मैं कहना ये जा रहा हूँ कि जैसे बेटे को माँ बहुत सहज रूप से अपना कार्य करके पालती है, क्या ऐसा ही हम धर्म को सहज रूप से करते हैं या बता बता के करते हैं? हम चाहते हैं कि हमने थोड़ा सा धर्म करा तो हमारा पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में नाम आ जाए। अभी तो ठहरो, अभी वो जो उस व्यक्ति को मैं बचा रहा हूँ ना, अभी पहले फोटोग्राफर को बुलाओ, तब बचाऊंगा, तब तो वो मेरी फोटो लेगा, कल छपेगी मुझे बचाते हुए। ऐसा नहीं, तब तो फिर हम अच्छे कार्य का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, और यही हो रहा है अपन सबके साथ। अच्छे कार्य में आनंद खूब आ सकता है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि हमको श्रेय मिलना चाहिए। नहीं भैया, श्रेय क्या, हमको आत्म शांति मिल गई, ये क्या कमती श्रेय है? हमको कोई थैंक्स दे, क्या आवश्यकता है? माँ तो कभी बेटे की सेवा करते हुए ये नहीं चाहती कि वो थैंक्स दे या वो दूसरे लोग भी देखें और कहें कि बहुत धन्यवाद आपने इतना करा। नहीं, ये सहज कर्म कहलाता। एक जगह लिखा है, शायद विनोबा ने लिखा, कि मुझे सांस लेना जितना सहज है, ऐसे ही भगवान का नाम लेना जिस दिन सहज हो जाए, उस दिन मेरा स्वधर्म शुरू होगा, उस दिन मेरा स्वधर्म शुरू होगा। जिस दिन मेरे पैर अपने आप मंदिर की तरफ फूट जाएं, जिस दिन कि मुझे धर्म करना बहुत आसान हो जाए, बहुत सहज हो जाए, उस दिन वो मेरा स्वधर्म। और दूसरी चीज, हार्दिकता होनी चाहिए। हार्दिकता किसी भी कर्म में, चोर को भी चोरी करते समय हार्दिकता हो सकती क्या? हृदय से कर रहा है क्या? नहीं, गलत काम कभी हृदय से नहीं किया जाता, हृदय गवाही नहीं देता, कर लेते हैं अपन, इसलिए उनको लिखना पड़ा कि कोई भी काम करो हार्दिक होके करो, जिसमें चित्त की प्रसन्नता हो, हृदय जिस चीज को बोले वो करो, वो तुम्हारा स्वधर्म है। देखो कितनी जल्दी हमारा कर्म डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम अपने हृदय की आवाज सुनना शुरू कर दें कि हमारा। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो सबके हृदय की बात अलग अलग होगी, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगी किसकी हृदय की बात सही मानी जाए। तो वो कहते, जिसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया है उसके हृदय की बात ही सत्य है, बाकी की नहीं है। और अहिंसा के साथ वो जोड़ते हैं सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, पांच व्रतों को धारण करने वाले के हृदय की बात ही सच्ची है, उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये एक चीज और अपने जीवन में शामिल कर लें कि कोई भी हम कार्य करेंगे, धर्म कार्य भी करेंगे, हार्दिक होकर के करेंगे, हम किसी से बात करते हैं बहुत हार्दिक होकर के करें, एक आनंद अलग आएगा, और अगर हम औपचारिक होकर के करेंगे कुछ भी आनंद नहीं आएगा। आप इसी तरह से हर एक कामों में लगा सकते हैं अपने जीवन में, जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करें बहुत हृदय से करें, गदगद होकर के अच्छे मन से करें। पूजा कर रहे हैं सब लोग और खूब ठाट बाट से कर रहे हैं, अगर एक बोझ मान करके करें तो भी कर सकते भैया, आठ दिन करना है वो तो अब खड़े हो गए हैं इसलिए। और अगर ये सोच करके कि आठ ही क्यों, आठवें दिन समापन नहीं होगा, आठवें दिन तो शुरुआत करूंगा मैं, अब मैंने इस आठ दिन में खूब सीख लिया है कि कैसे किया जाता धर्म ध्यान, कैसे समय निकल आता है पाप के बीच में भी धर्म करने का, ये मैंने सीख लिया, तो मैं अब धीरे से बहुत सारे संसार के कामों के बीच में से भी धीरे से समय निकाल करके धर्म ध्यान कर लूंगा। ये कहलाएगा कि हाँ, धर्म ध्यान के प्रति हमारे मन में हार्दिकता आ गई है, अब हमारा हृदय स्वयं कहने लगा है कि हाँ मुझे करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना सुनाऊं और फिर बस आज अपन इतनी ही बात करेंगे। वो घटना बहुत दिन के बाद सुना रहा हूँ, शायद मैं सोचता हूँ कि 96 के बाद सुना रहा हूँ। वो ओ हेनरी करके एक राइटर, इंग्लिश राइटर है, उनकी कहानी है द लास्ट लीफ, ऐसे करके बहुत अच्छी कहानी है, अब बहुत छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं। क्या हुआ, एक द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ है द आखिरी, द लास्ट लीफ, या कि आखिरी पत्ता, दूसरे नाम से भी छपी है ओ हेनरी के दूसरे संग्रह में, ए मास्टरपीस। मास्टरपीस, कोई भी चीज मास्टरपीस कब होती है, कोई भी कार्य श्रेष्ठ कब होता, जब उसके साथ हृदय जुड़ा हो। जब उसके साथ में हार्दिकता हो तब वो मास्टरपीस हो जाता। उसमें लिखा उन्होंने कि वो सारी चीजें मास्टरपीस हैं, वो सारी चीजें बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनमें से कुछ भी थोड़ा सा हटा दो तो चीजों का नुकसान होता है और बनता कुछ नहीं। इतनी यूनिक चीज होती। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, उसके पेंटिंग्स लाखों रुपए में बिकते थे। कुछ दिन से उसने कोई भी चित्र बनाना बंद कर दिया था। जब लोग उससे पूछते थे कि बाबा बूढ़ा हो गया, 60 साल के लगभग का होगा, तो उसकी घटना लिखी, उससे पूछते थे कि बाबा अब आप क्यों नहीं बनाते हैं, तो बोलता था कि बनाऊंगा बनाऊंगा जरूर बनाऊंगा, मैं जीते जी एक और आर्ट बनाऊंगा, लेकिन वो मेरा मास्टर पीस होगा, वो मेरा अंतिम और सबसे श्रेष्ठ आर्ट होगा। तो लोग इंतजार करते कि कब बनाएगा वो मास्टरपीस। और इसी बीच में घटना होती है कि वो जहाँ अपना एक कॉलेज जैसा चलाता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स आते हैं और वहीं रह के हॉस्टल में और आर्ट सीखते हैं, तो दो बहनें रहती हैं, वो दोनों भी उस वृद्ध के अंडर में और आर्ट सीखती हैं। क्या होता है कि उसमें से एक बहन थोड़ा बीमार हो जाती है, और उस बीमारी के दौरान उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि अब वो बच नहीं पाएगी। और इतने ही नहीं, एक दिन उसे लगता है जब वो लेटी रहती है अपने कमरे में और दूसरी और बहन उसको समझाती है कि नहीं तू जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कहती कि अब मैं ठीक हो नहीं पाऊंगी, ये जिसका भी है उसका काम पूरा हो गया, मेरा अभी बाकी है, तो हाँ इसने अपना काम तो बखूबी किया है। तो वो अपने खिड़की में से बाहर देखती है तो एक एक पेड़ हिलता हुआ दिखाई पड़ता उसको। वो कहती है, उसे लगता है कि उस पेड़ में चूंकि मौसम पतझड़ का था तो बहुत सारे पत्ते टूट गए थे, बहुत थोड़े से पत्ते बचे थे, तो वो कहती है कि जैसे जैसे इसके पत्ते टूटते जाएंगे वैसे वैसे मेरे आयु भी उतनी ही घटती जाएगी, ऐसा उसको लगने लगता है। देखिए कहानी है, और कहानी में इस तरह की चीज सच भी हो या झूठ हो अपन को इससे क्या करना, अपन को उससे संदेश लेना है, मुख्य बात तो ये है। ऐसा अपने मन में भी कभी आ सकता है, कई घटनाएं अपन को इस तरह की नहीं सुनने में आती, बच्चे लोग पढ़ते हैं कि वो उसकी उसकी जान कहाँ रखी थी, उस तोते में थी, उस तोते को मारोगे तो फिर राजा मर जाएगा, नहीं पढ़ते हैं ऐसी कहानी? अरे सही सही बताओ, पढ़ते तो हैं ऐसी कहानी। तो ऐसे ही इसमें भी था, लेकिन ये बहुत बड़े राइटर की कहानी, वो सोचती है कि मेरे जितनी इसमें पत्तियां बची हैं बस वो पत्तियां जिस दिन टूट जाएंगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा उसने सोच लिया मन ही मन। डॉक्टर्स आते थे उसको बहुत समझाते थे, वो बाबा भी आता था बूढ़ा कलाकार, वो कहता था नहीं बेटी तुम बच जाओगी, वो कहती थी कि बाबा अब तो जीवन शेष नहीं रहा, पड़ी थी वो सब सेवा कर रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि, और वो दिन में 3 दफे और खिड़की खुलवा करके जरूर देखती थी कि कितनी पत्तियां बची हैं उस वृक्ष पर, और धीरे धीरे वो सोचती थी कि बस अब आज और इतनी बची हैं, कल और इतनी बचेंगी, मैं भी इसी तरह इतने दिन और शेष रहे, ऐसी निराश हो गई थी। देखो जीवन में, जीवन से निराश होना, जब तक हमारे जीवन में हार्दिकता नहीं होगी तब तक तो हम निराश ही रहेंगे। हम लोग भी तो इसी तरह कुछ बिगाड़ की तरह काम करते हैं, तब तो हमारे जीवन में सुख नहीं मिलता, अच्छे काम भी हम बिगाड़ समझ के करते हैं, हम निराश हो जाते हैं एक बार जब हमें सफलता नहीं मिलती अपने जीवन में। वो कहते नहीं, कर्म करें हार्दिक होकर के करें। क्या होता है एक दिन कि वो दोपहर में देखती है तो देखती है कि 25-50 पत्ते और बचे हैं, बस फिर बंद करवा देती खिड़की। लेकिन अचानक क्या होता है कि बहुत आंधी पानी तूफान शुरू हो जाता है। अब वो भीतर भीतर घबराती है कि इतना पानी आंधी तूफान, अब तो उस वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची होगी, और जैसे ही उस पर एक भी पत्ती नहीं होगी मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा उसने सोच लिया। अब वो जो उसकी सेवा में थी वो दूसरी बहन, वो बाबा के पास गई, उस कलाकार उस आर्टिस्ट के पास कि बाबा कुछ करो, इतनी आंधी पानी तूफान चल रही है और उस पेड़ पर तो सचमुच अगर कल सवेरे उसको एक भी पत्ती नहीं दिखेगी ना तो वो तो प्राण ही छोड़ देगी। अब बाबा धीरे से मुस्कुराता है, कहता कि जाओ तुम उसके पास बैठो, और वो रात के अंधेरे में फिर से खुलवाती है खिड़की कि देखें इतनी आंधी पानी तूफान में क्या हुआ पेड़ का, लेकिन रात में कुछ दिखते ही नहीं, तो चुपचाप सो जाती कि सुबह उठूंगी देखूंगी, लेकिन इतनी आंधी पानी तूफान में कोई कुछ नहीं बचा होगा शायद, और सचमुच उस वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। लेकिन जब सुबह उसकी खिड़की खोली गई और देखा तो इतनी आंधी पानी तूफान के बाद भी उसको दिखाई पड़ा कि कि एक पत्ती अभी भी डाल में लटकी हुई है। उसका पूरा मन चेंज हो गया एकदम, जैसे कि अचानक निराश हो गई थी वैसे ही आशा से भर गई। अब वो क्या कहती है कि मैं बच जाऊंगी। अब कैसे, उसने पूछा, कैसे बच जाओगी? इतनी आंधी पानी तूफान में भी अगर पत्ती उस पर लगी रह सकती है तो मैं कितनी भी विपत्ति आ जाए मैं बची रह सकती। वो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती उसकी सेवा करने वाली बहन। वो भाग करके जाती कि हम बाबा को बता के आए कि वो फिर से उसके जीवन में हार्दिकता आ गई है, वो फिर जीने को तैयार है। तो पहुंचती है बाबा के पास, तो बाबा के कंधे पर, उनके कंधे पर सीढ़ी है, लालटेन ऐसे पड़ी है और वे अपना हाथ ऐसे लटकाए और चुपचाप दरवाजे के बाहर पड़े मिलते हैं उसको। वो बाबा को जगाती है कि बाबा बोलो बाबा। बाबा कुछ नहीं बोलते, बाबा तो ठिठुर गए हैं, बाबा तो पानी से भीगे हुए हैं, उनके प्राण निकल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ की लालटेन, उनके हाथ का ब्रश और उनके कंधे पर लगी हुई सीढ़ी किसी बात की सूचना दे रही है। वो भाग करके जाती कि हुआ क्या आखिर। वो उस पेड़ के पास जाके देखती है, उस पेड़ पर तो एक भी पत्ती नहीं थी, लेकिन दूर से कोई देखे तो पेड़ पर एक पत्ती लटकी दिखाई पड़ती थी। बात यह थी कि उस पेड़ के पीछे की दीवार पर बाबा ने रात भर मेहनत करके लालटेन के उजेले में सीढ़ी पर चढ़ करके एक इस तरह से पत्ती बनाई थी कि बनी थी वो दीवार पर लेकिन दिखती थी वो पेड़ में लटकी हुई, और उतनी सी पत्ती के पीछे वो पूरे के पूरे उसका जीवन बच गया। द लास्ट लीफ, द मास्टर पीस। आप समझ गए मेरी बात? जीवन में उसने क्या बनाया, उसने कौन सा काम किया, सबसे श्रेष्ठ काम जीवन में दूसरे के प्राण बचाने का काम। मैं सोचता हूं हमारा स्वधर्म क्या है, अपने आत्मा को बचाना और अपने आसपास अगर कोई अपने हार गया है, जीवन से निराश हो। आत्मा की अविनश्वरता को, शरीर